نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إيمان بالغيب، يؤمنون بالآخرة. یہ ہے ہماری سیریز ان دیکھی دنیا پر یقین رکھنا، بلیف ان ان سین ورلڈ. آپ سب شروع سے ہی سورت فاتحہ کے بعد جب سورت بقرہ شروع کرتے ہیں تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین کہا گیا. کون ہوتے ہیں متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب. پہلی صفت جنت میں جانے کی، ہدایت کی دعا کو پورا کرانے کی کیا ہے؟ کہ آخرت پر ایمان ہو. بالغیب میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں آخرت ہے، اللہ کی ذات ہے، فرشتے ہیں، انبیاء کرام، رسول، جنت، جہنم اور ایمان بالقدر. تو یہ ہے ہماری پوری سیریز. یہ تقریباً ایک سال کا کورس انشاءاللہ فیوچر میں بنے گا، کیونکہ آج ضرورت اس چیز کی ہے. آپ کے ساتھ آج ایمان بالآخرہ، بلیف ان ڈے آف ججمنٹ میں سے جو ٹاپک ہمارا پیچھے سے چل رہا ہے وہ قبر ہے، یعنی انسان اور قبر. قبر کیا ہے؟ قبر دباتی ہے؟ قبر میں سوال جواب ہوں گے؟ قبر کے اندر انسان کی کیفیات کیا ہیں؟ مرنے کے بعد روح دوبارہ ڈال دی جاتی ہے؟ یہ سب کرتے کراتے جو حدیث ہم دیکھ رہے تھے، اس میں سے اگلی حدیث نوٹ کیجئے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، جب قبر کا لفظ بولوں تو میری قبر، اپنی قبر، اور جہاں بھی لفظ میت بولوں تو اپنا نام لکھیے گا. ہے مشکل، لیکن یہ آگے کے لیے آسان ہوگا. اور یاد رکھیے کہ جہاں قبر کا ایک نیگیٹو رخ ہے تو وہاں پازیٹیو بھی ہے. آج کا ہمارا ٹاپک انشاءاللہ قبر کی نعمتیں ہیں، راحت ہیں، پھر ساتھ عذاب بھی آئیں گے. تو بالکل اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے گھڑے میں محسوس کریں. سلف صالحین میں سے کچھ کامل کتابوں میں نقل ہے، گھر کی بیک یارڈ، جس کو آپ پچھواڑا کہہ سکتے ہیں، اس میں انہوں نے ایک گڑھا کھودا ہوتا تھا اور رات کو کچھ وقت اس گڑھے میں جا کر گزارتے تھے. یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ کوئی مراقبہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ نفل ہے؟ یہ تہجد ہے؟ نہیں، یہ محاسبہ ہے. حاسبو قبل ان تحاسبو، تم حساب اپنا خود کر لو اس سے پہلے کہ کیا جائے. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نے کوئی کام بہت ہی دل سے کرنا ہو نا، تو پھر اس کے لیے ریہرسل کی جاتی ہے نا، پریکٹس. اب تو لوگ شادیوں کے ڈانس کی بھی پریکٹس کرتے ہیں، نکاح سے پہلے دلہا دلہن نے بھی جو کل اگلے دن ڈانس کرنا ہے وہ پہلے جا کر غیر محرم بیٹھ کر آپس میں پریکٹسنگ کرتے ہیں. کہ مجھے کسی نے بتایا، میں نے دیکھا تو نہیں ہے. تو پریکٹس میکس اے مین. پرفیکٹ تو نہیں کر سکتی لیکن پریپیئرڈ کر سکتی ہے. تو آپ سب اس وقت پریکٹس کریں. دیکھیے کتنا بڑا یہ ہال ہے، کتنی سہولت ہے، اے سی چل رہے ہیں، پنکھے، لائٹس، کرسی، میز، یہ سب نہیں ہوگا، صرف میں ہوں گی اور مجھے قبر میں دفنایا جائے گا. تو نیک انسان بغیر کسی خوف اور گھبراہٹ کے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. آپ سوچیں، آپ اٹھ کے بیٹھ رہی ہیں، پھر اسے پوچھا جاتا ہے تو کون سے دین پر تھا؟ وہ کہتا ہے میں اسلام پر تھا. پھر اس سے پوچھا جاتا ہے وہ کون آدمی ہے جو تمہارے بیچ بھیجا جاتا ہے؟ مومن جواب دیتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اللہ کے رسول تھے جو ہمارے پاس معجزات لے کر آئے اور ہم نے ان کی تصدیق کی. پھر اگلا سوال کیا جاتا ہے، کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو دنیا کی زندگی میں دیکھنا تو کسی کے لیے ممکن نہیں، یعنی اس کا عقیدہ بھی ٹھیک تھا. پھر اس کے لیے جہنم کی طرف سے ایک سوراخ، یعنی ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے. جیسے اس ہال میں کوئی کھڑکی کھلی رہ جائے تو ہو سکتا ہے ادھر کی ٹھنڈک باہر جائے یا باہر کی ہیٹ اندر آئے. تو ایک سوراخ کھولا جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ آگ کا ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے شیشے کے اندر سے آپ باہر کا منظر دیکھیں، نیک بندے کو ایسے دکھے گا، اس کو جہنم چبھے گی نہیں. دکھایا جائے گا اور اسے بتایا جائے گا کہ اس آگ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا. ذرا سوچیے کتنی فیلنگ آئے گی. اللہ تعالیٰ شکر ہے میرے اور اس کے بیچ میں ایک بیریئر ہے، مجھے اللہ نے اس میں نہیں ڈالا. پھر اس کے ساتھ ہی جنت کی طرف ایک دروازہ یا ایک سوراخ کھولا جاتا ہے اور مومن آدمی جنت کی بہاریں اور اس میں موجود نعمتوں کو دیکھتا ہے. پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا اخروی ٹھکانہ ہوگا، یعنی ابھی نہیں لیکن تم ادھر جاؤ گے. जैसे अब घर में इंटरनेट पे ही पहले ही सर्च कर लेते हैं ना, हम जहाँ जाएंगे ये होटल होगा, ये होगा, उधर जाएंगे एयरपोर्ट ऐसा है। आजकल तो आप गूगल मैप क्या छोड़िए, पूरी की पूरी आप सड़कें खोल के आ जाएं। आप अपने इस हॉल को अगर देखना चाहें तो गूगल में जाकर आप उसका सेटेलाइट व्यू चेक करें, बिल्कुल आपको इसके दरवाजे पे लगे ये साइन बोर्ड भी दिखाएगा। तो ये कुछ इसी किस्म का मामला है। उसको कहा जाएगा कि ये तेरा आखिरी ठिकाना है। अब इस जुमले को लिखिए, तुमने ईमान की हालत में जिंदगी बसर की, ये मेरे आपके करने का काम है। इस पूरी हदीस में से ये आपका मेरा काम है, बाकी तो जब होगा देखेंगे इंशाल्लाह। तुमने ईमान की हालत में जिंदगी बसर की और इसी पर मरे, और इसी पर यानी इस कब्र से इंशाल्लाह उठाए जाओगे, क्या उसके दिल की कैफियत होगी। इसके बरक्स गुनाहगार शख्स, उसको कब्र में बिठाया जाता है। अब इधर किसको सोचूं मैं, इधर भी मैंने खुद को ही सोचना है। कोई किसी अपने रिश्तेदार को ना सोचे, और वो भी ससुराली या जो अच्छी नहीं लगती दोस्त है, नहीं मैं ही हूँ, अल्लाह ना करे ऐसा हो। पर ये बचना है मैंने, जबकि गुनाहगार आदमी को जब कब्र में बिठाते थे तो खौफ सता, घबराया हुआ, आपकी जुबान में आज टेंस, स्ट्रेस्ड, खौफ सदा, घबराहट। उसे भी यही पूछा जाता, तू किस मजहब पर था, वो कहता मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। फिर इसे पूछा जाता वो कौन आदमी, बाज रिवायत में आता है कि नबी सल्लम की शबीह दिखाई जाती है वहां, अल्लाह नोज दी बस। वो कहता है मैंने लोगों को जो कहते हुए सुना वही मैं भी कहता था, तुक्के लगाता था, यानी वमा हुआ बिल हजल। कुरान कहता है ये दीन को मजाक नहीं है, ये कुरान कोई खेल तमाशा नहीं है कि जिधर से दिल चाहे ले लो। आज गूगल से लोग सारा दीन सीख रहे, कोई व्हाट्सएप से सीख रहा, कोई इधर से सीख रहा, यानी कोई एक पोस्ट आती है तो उसमें कहता है ये बहुत बड़ी फजीलत है, दूसरी में आती है ये बिदअत है, तीसरा कहता है ये मकरूह है। जो लोग कहते थे ना मैं भी बस वही कहता था, यानी सही जवाब नहीं दे पाएगा। फिर जन्नत की तरफ एक सुराख खुला जाएगा, अब उससे ऑपोजिट देखिए, और जब वो जन्नत की बहारें और इसमें मौजूद नेमतों को देखता है तो उसे बताया जाता है ये है वो जन्नत जिसमें अल्लाह ने तुम्हें भेजना था, लेकिन तुम अपने करतूतों की वजह से महरूम हो गए, तुम्हें अल्लाह ने महरूम कर दिया। कितना अफसोस होगा, कितना रिग्रेट होगा। सिर्फ एयरपोर्ट पे बैठे हुए ही लोग ये सारी चीजें जहन में ले आए ना, आपको 6-7 घंटे का स्टॉप ओवर है, थकन, गर्मी, वट एवर, जो भी बदहाली, सामने आपको एक लाउंज दिखाया जाए कि अगर आपका टिकट फर्स्ट क्लास का होता ना तो आपको इधर वो सर्व करते, ये फुला होता ना तो ये आपके पाँव भी वो दबा देते, ये आपको मसाज भी कर देते, कितना रिग्रेट होगा। और ये तो दुनिया है, और जब वहां ये एहसास होगा कि ओहो मेरी इतनी खूबसूरत जन्नत मिस हो गई, तो क्या दिल का हाल होगा। और फिर उसके लिए जहन्नम की तरफ से एक सुराख खोला जाएगा, और वहां वो देखता है कि आग का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खा रहा है। फिर उसे बताया जाएगा ये तुम्हारा उखरवी ठिकाना है, क्योंकि तुम ईमान लाने की बजाय, इस जुमले को भी लिख ले ऑपोजिट पहली वाली से, तुम ईमान लाने की बजाय शक में पड़े रहे और शक की हालत में ही मरे, और अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें शक पर ही उठाया जाएगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हु, सही रिवायत है ये। अगर आप इस हदीस को सामने रखें तो कितने फैसले करने आसान हो जाए। किताबो जोहद की ये रिवायत है। तो क्या पता चला इतनी बात का खुलासा कि कब्र खेल नहीं है, अजाबे कब्र बर हक है। कब्र वाला दुनिया के मामला से अलग हो जाता है, ना उसको पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और ना हम पूरी तरह असेस कर सकते हैं कि उधर क्या होगा। इसी कब्र के टॉपिक में नेक्स्ट थिंग लिखिए, नेक आमाल कब्र में काम आएंगे। बड़ा प्यारा टॉपिक है ये। तो पहली बात तो ये है कि रिवायात से पता चलता है कि इंसान दुनिया की जिंदगी में जो नेक काम करता है ना, वो कब्र में काम भी आएंगे, कब्र के फितने से और अजाबों से भी बचाएंगे। और मैं खुद क्यों कहूँ, इसमें तो मेरी औकात ही नहीं कुछ कहने की, हदीस सुन लीजिए, क्योंकि ये बातें सिर्फ वमा यंतिकुनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा, सिर्फ उसी हस्ती की तरफ से हम कबूल कर सकते हैं। और रिवायत अबू हुरैरा से है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुर्दे को जब कब्र में रखा जाता है, अब ये मुर्दा कौन है, मैं, आई एम, अपना नाम लिखे, तो दफन करने वाले वापस पलटने वालों के जूतों की वो आवाज सुनता। अगर मरने वाला मोमिन हो तो नमाज इसके सर के पास, इमेजिन कीजिए पीछे से, रोजा दाईं तरफ, जकात बाईं तरफ, और नेक आमाल मसलन सदका व खैरात है, लोगों के साथ नेकी और हुस्ने सलूक वगैरह पाँव की तरफ से इसकी हिफाजत करते हैं। जरा सा रुकें, उधर जाने से पहले इस दुनिया में रहिए। नमाज पढ़ सकती हो ना अभी? अपनी नमाज को बेहतर कर सकती हो ना, और अपनी नमाज के अंदर खुशू ला सकती हो ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह सर की तरफ से अजाब नहीं आएगा। रोजे रख सकते हैं, फर्ज रोजे तो आने ही वाले हैं, अभी से सुन्नत रोजे रखने शुरू करते हैं, पिछले छुटे हुए रोजे। तो एक शॉर्ट रिमाइंडर है मेरे आपके लिए कि रोजा अगर छुटा हुआ है तो उसको पूरा कर लें, नफिल रख लें। या में 20 के 3 रोजे, और आप तो वैसे ही थोड़ा सा 2 ढाई माह ही रह गए हैं ना, तो आप अब चाहें तो मंडे और थर्सडे रख लीजिए, जो रख सके। चलिए नेक अमाल कर सकते हैं, सदका खैरात कर सकते हैं, पैसा नहीं है क्या करें। स्माइल। एक चीज जिसकी बहुत जरूरत है इस वक्त, माफ कीजिएगा मैं अभी, आप लोग तो वैसे ही स्माइल क्या करते हैं, आप तो खिलखिलाते ही रहते हैं। एयरपोर्ट से लेकर, यानी जो भी, जिसको आप कहते हैं ना पब्लिक प्लेसेस, इमिग्रेशन, एयरपोर्ट की अथॉरिटीज, पाकिस्तान एंटर होने के बाद की बात कर रही हूँ, घर आने तक एयरपोर्ट से, मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, इनकी स्माइल किधर गई। हम मुसलमान हैं, और ये पिछले मुल्कों की भी है, जहाँ भी मुसलमान मुल्क हैं, लोग एक दूसरे को देख के स्माइल नहीं देते, सलाम नहीं करते। इवन आप, मैं क्या नाम लूँ, आप वो मुल्क जिनके लिए आपके दिल मोहब्बत से चूर है, कोई फीलिंग्स नहीं है आपके लिए उनके दिलों में, ऐसे स्वार्ट चेहरे। तो मुझे हर लम्हे वो हदीस याद रहती थी सफर में भी, कि एक वक्त आएगा लोग सिर्फ जान पहचान के लोगों से सलाम करेंगे। अब यकीन करें, अच्छी बात जिसकी भी है बतानी चाहिए, और बार बार बतानी चाहिए ताकि शायद किसी को फायदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कह लीजिए कि नॉर्वे, साल का तकरीबन 1/3 मेरा वहां गुजरता है, द मोस्ट स्माइली नेशन। अगर आप किसी के साथ वॉक कर रहे हैं और आपके सामने से कोई आ रहा है और आप उससे पास से गुजर, अगर आप उसको देखकर स्माइल और हेलो है ये नहीं करेंगे ना, तो वो माइंड करेंगे खुले हुए चेहरे। और मर्द, यानी मैं वॉक पे जब निकलूं, वॉक पे पैदल जरा ज्यादा इन्फेक्शन होता है, आप यकीन करें दूर से ही देख लेते हैं ना ट्रैक पे, वो मर्द पूरा कोना उधर, और अल्लाह झूठ ना बुलाए, मैं गलत नहीं कह रही, वो बंदा ऐसे नीचे सर गुजरता है कि वो पलक झपक के नहीं देखता, चाहे आप अपना निकाब उतारते हैं, कसमन वो नहीं देखते। यहूदु मिन अबसारिहिम, क्योंकि मैं निकाब में होती हूँ, बाकी औरतों का मुझे नहीं पता, वो करती होंगी तो ये भी करते होंगे। किसी मर्द ने कभी मुझे नहीं कहा, ना मैंने उनको कुछ कभी कहा। हाँ, औरतें, सिस्टर्स और यंग लोग, जो अब नए, यानी जो इस वक्त के यूथ है वहाँ की, बहुत स्माइल। आप किसी से रास्ता तो पूछ ले, आपको घर छोड़ने आएंगे, उनके चेहरों पे इत्मीनान है, देख के तबीयत हशाश विशाश होती। आप सिर्फ अपने घर में इस सुन्नत को आज से सोचना शुरू कर दें, जो मर्जी हो लेकिन चेहरे से स्माइल नहीं छोड़ना। आपकी मेड आए, मासी आए, खादिमा, आप उसको जो भी कहते हैं, खाला, आप स्माइल तो दीजिए, आपको पता है उसके अंदर एनर्जी भर जाएगी। हम तो आते ही आ गई, ये वक्त देखा है आपने, कब से इंतजार कर रही हूँ। यानी ये पता नहीं क्यों कल्चरली हम बदमिजाज लोग क्यों हो गए, और आगे देखिए, नहीं, असल में यहाँ गर्मी बहुत है ना, या बिजली महंगी हो गई है, या पेट्रोल महंगा है, यहाँ के हुक्मरान आपस में लड़ते हैं ना, और आपको नहीं पता आपके कितनी मक्खियां ना हमारे इर्द गिर्द। तो भाई जलेबियां भी तो आप ही खाते हैं, आम भी मीठे आप ही खाते हैं, कुछ भी नहीं है, स्माइल तो फ्री है ना। तो आज से स्माइल पे बात करें, ये भी एक सदका। ना दें आप रुपए पैसे, सोना चांदी ना दें किसी को, अपने पके खाने में से एक खुश दिली के साथ किसी के साथ शेयर कर दें, और लोगों के साथ नेकी, हुस्ने सलूक, मतलब जिसको पंजाबी में एक लफ्ज बोलते हैं आवाजार, इंग्लिश में उसका ऑपोजिट इरिटेटेड, और उर्दू में आप क्या कहेंगे इन दोनों लफ्जों का, उर्दू आदम बेजार। यानी आदम बेजार क्यों है हम? मोमिन तो मुस्कुराता है हर लहजा, है मोमिन की नई आन नई शान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा की गवाही है कि आपसे ज्यादा स्माइली कोई नहीं था, कितने गम थे उनके पास, गिनने का वक्त नहीं अभी। कितने चैलेंजेस थे उनकी जिंदगी में, दो दो महीने चूल्हा ना जले और वो बंदा स्माइल करे और उसकी बीवियां फिर भी उसके साथ ही गुजारा करें। जरा अपने आप को कंपेयर करें, हम अपने शौहरों के साथ कितने शिकवे करते हैं। तो ये नेकियां कल आपकी कब्र को ठंडा करेंगी। दे दीजिए, गिव एन स्माइल, खुशी के साथ हुस्ने सुलूक करें तो पाँव की तरफ से हिफाजत हो जाएगी। जब इसके सर की तरफ से अजाब या अजाब का फरिश्ता आता है तो नमाज आगे से रुकावट बनते हुए कहती है कि मेरी तरफ से रास्ता नहीं है। फिर जब दाई तरफ से अजाब या अजाब का फरिश्ता आता है तो जकात इसका दिफा करते हुए कहती है मेरी तरफ से रास्ता नहीं है। फिर अजाब और अजाब का फरिश्ता पाँव की तरफ से आता है तो दूसरी नेकियां यानी सदका व खैरात, सिला रहमी, लोगों के साथ हुस्न खैर और भलाई और हुस्न सलूक वगैरह इसका दिफा करते हुए कहते हैं हमारी तरफ से रास्ता नहीं है। तरगीब व तरहीब की सही रिवायत है। तो फिर कुछ अमल का नुक्ता मिला, आज के आपके यहाँ आने का फायदा हुआ, बस जाइए, इतना भी काफी है। मत सुने आगे, बंद कर दें, फिर दोबारा तब सुनिए जब आगे आपके पास फरागत हो। सुन सुन के सुन ना हो जाए, क्योंकि हमारे कल्चर में ये चीज बहुत आम हो गई है कि हम इन चीजों को अपने इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लाते, बल्कि अपने पढ़ने पढ़ाने की वजह से और चिड़चिड़े हो जाते हैं। बच्चों से खिंच खिंच, मियाँ से माँ से, पढ़ना है, टेस्ट है, मेरा वो है, मेरा वो है, मैं क्या करूँ, मेरे साथ कैसा हुआ। नहीं, अपना अखलाक अच्छा करें। और आप सब जो स्टूडेंट हैं, आपको भी यही कहूँगी, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके दीन की वजह से, आपकी इन क्लासेस की वजह से आपके घर में खुशी आए, लोग खुशी से आपको इन कोर्सेज में आने दें, तो अपना अखलाक अच्छा करें। दें जरा स्माइल एक दूसरे को, देखें इधर, और अल्लाह करे सास बहू साथ बैठी हो, नंद बावच, देखें जरा स्माइल करें। अब आपका ये स्माइल क्या पता कब्र में आपके पाँव की तरफ से आने वाले अजाब से आपको बचा ले। पॉसिबल है, कंधे दबाएं एक दूसरे बस। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आपका आज यहाँ बैठना और ये कंधे दबाना और आपका ये एक दूसरे को देखकर स्माइल देना आपके कब्र के अजाब से अल्लाह ताला आपको बचाने का जरिया बना। नेकियां कीजिए और साथ ही साथ उन नेकियों के ऊपर अजर की भी उम्मीद रखिए। रगबम व रहबा, आज ये भी एक अजीबोगरीब सा ख्याल दे दिया गया लोगों को कि नहीं, हम जन्नत के लिए तो नहीं काम करते, हमें जहन्नुम गए नहीं, हम तो अल्लाह के लिए करते हैं, ये बेकार बात है। तो आपके ये एक दूसरे के कंधे दबाना क्या फायदा होगा, इंशाल्लाह कब्र में आसानी होगी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बड़ा अहम टॉपिक है कब्र से मुतल्लिक। कब्र में जिस्मों की हालत क्या होती है, पहले तो मैं आपको इसमें अपनी पर्सनल फीलिंग दे देती हूँ। इस तबा उम्रे के दौरान जब मदीना मनवरा गए तो जहाँ भी अकोमोडेशन मिली तो हमारा रूम बिल्कुल फ्रंट पे था, बस समझे कि खिड़की से देखें तो कॉर्नर था मस्जिद का और मस्जिद नबी, पूरी मस्जिद नबी दिखती थी। मैंने शुरू के 2-3 दिन बहुत ही, जिसको आप कहते हैं ना कि अबू अय्यूब अंसारी को एक तो याद करते हुए गुजारे, क्योंकि वो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मेहमान बने और आप नीचे ऊपर ऊपर नीचे का मामला सुना हुआ है ना, तो वो कंफर्टेबल नहीं, तो मैं कंफर्टेबल नहीं थी और दिल चाहता था पर्दा खोल के देखे, क्योंकि खोलें तो रात को पूरी मस्जिद नबी आपकी बेड के सामने दिखती थी। फिर मैं रूख उधर नहीं कर सक रही थी क्योंकि पीछा हो रहा है, और जो फीलिंग थी मुझे वो अब आप इस टॉपिक को सुनते हुए सुने कि नबी का जश्न मुबारक तो इधर ही है ना। मेरा दिल करे कब्र कभी मिट्टी की बजाय शीशे की हो, मैं जाके झांक के आ जाऊं। फिर जब सोना था, यकीन करें मैं बिल्कुल मुबालगे के बगैर कह रही हूँ, मैंने पूरे कर्टन डबल कर्टन बंद किए, वो भी सुबह के वक्त जबकि थोड़ा सोना है ताकि दिन का काम भी करना है, और लेकिन मैं उस करवट नहीं सो सकी। फिर मुझे समझ आया कि इमाम मालिक मदीना मुनव्वरा में जूता क्यों नहीं थे पहने। ये फीलिंग कब आती है, जब आपको पता होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद अभी आप सुनेंगे बिल्कुल कब्र में ऐसे है जैसे इस वक्त आपका मेरा वजूद है। मैं सोचूं अल्लाह के नबी को लोग देखते होंगे तो अल्लाह, बस मैं देख लूँ, एक नज़र में देख लूँ, यानी मैंने सारी जिंदगी कभी ये फीलिंग्स नहीं महसूस की जो इस मदीना के दिनों में, क्योंकि होटल बिल्कुल सामने था, सबने पहले भी होता है कि इस दफा व्यू था, और उसके साथ हमें एक बहुत ही प्यारा सा लाउंज साथ लिया हुआ था जिसमें हमारे सेशंस भी और मीट एंड ग्रीट, पूरा स्टूडियो अपार्टमेंट था हमारे पास। यानी वो एक अमेजिंग, मेरे लिए बहुत बड़ा चाम है कि दोबारा कभी जाऊं तो उधर ही जाऊं। तो नबी का वजूद मदीना में है। आइए सुनते हैं मुख्तलिफ लोगों की कब्रों में क्या कैफियत होगी। पहली तो बात है कि मरने के बाद ये इंसानी जिस्म मट्टी में मट्टी बनकर खत्म हो जाता है। जरा से अपने हाथों को देखिए, स्किन, नाक, नक्शा, नैन, नक्शे, ये सब मट्टी बन जाएगा। मट्टी आपको मतलब जिस्म को खा जाती है, मेटाबॉलिज्म होती है। आप दुनिया में कोई चीज थोड़े दिन मट्टी में दबा दें, आप निकालेंगे तो खत्म होगी। हाँ, एक टुकड़ा बाकी रहता है, वो क्या है? हदीस सुनिए, अबू हुरैरा की रिवायत है, एक रीढ़ की हड्डी के अलावा इंसान का बाकी सारा जिस्म मट्टी में मिलकर मट्टी हो जाता है, और कयामत के रोज इसी हड्डी से इंसान की तख्लीक होगी। जी, ये रिवायत मौजूद है, आप इसको देखना चाहें, इब्ने माजा की रिवायत है 4267 नंबर की। अब ये जो टुकड़ा बच जाता है, ये कौन सा है आपको पता है? बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड, बिल्कुल जिसके ऊपर पूरे जिस्म का बैलेंस है। मगर अंबिया के जिस्मों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाते हैं। अब रोजे को जरा सोचिए अंदर से कैसा होगा, रोजे रसूल, और इनके जिस्मों को मट्टी नुकसान नहीं पहुंचाती। औस बिन औस से रवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जुमे का दिन सब दिनों से अफजल है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी दिन इनकी रूह कब्ज की गई, इसी दिन सूर फूका जाएगा, इसी दिन उठने का हुक्म होगा। दुआ करे अल्लाह में जुमे की मौत है। लिहाजा जुमे के दिन मुझ पर बकसरत दुरूद भेजा करो, तुम्हारा दुरूद मेरे सामने पेश किया जाता है। सहाबा कराम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, आपकी हड्डियां तो बसीदा हो चुकी होंगी। देखिए सहाबा कितने बोल्ड थे, अकीदे के मामले में सहाबा को फॉलो कीजिए और किसी की जरूरत ही नहीं रहेगी। कहने लगे कि आपकी तो हड्डियां बसीदा हो चुकी होंगी। रावी कहता है कि सहाबा ने इस तरह कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक तो मट्टी में मिल चुका होगा, तो फिर हमारा दुरूद आपके सामने कैसे पेश किया जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अंबिया कराम के जिस्म जमीन पर हराम कर दिए हैं। जी, ये हदीस आपके सामने है, अबू दाऊद 4017 और निसाई 1375। तो अंबिया कराम के जिस्म मट्टी नहीं खाती। इसी तरह नेक लोग, उनके जिस्म भी जब तक अल्लाह ताला चाहे महफूज रहते हैं। अल्लाह हमारा भी ऐसे ही करे। दिल तो नहीं चाहता ना कि हमें कीड़े खाएं, लेकिन ये जो कीड़े खाने हैं ना, तो ये जो मैंने आपको फीलर दिया ना कि ये सब खत्म हो जाना है। आप देखिए, हम जिस्म और रूह का मजमू है ना, जिस्म अगर मट्टी खा गई तो क्या वैल्यू है? आज दुनिया में आप तारिक रोड की एक कोने से दूसरे कोने की दुकानें देख लें, कपड़ों की दुकानें, जूतों की दुकानें, पार्लर्स, मेकअप, ए बी सी डी, ये उस मट्टी के वजूद की खिदमत के लिए जिसने मट्टी में मिल जाना है। और ये जो इदारे हैं ऐसे जिधर आप बैठे हैं, मस्जिदें जहाँ लोगों के दीन को खूबसूरत तरीके से सर्व किया जाता है, ये वो जगह है जहाँ रूह की हिफाजत की जाएगी। तो आप और मैं अपनी रूहों को देखिए कि कैसे सर्व करते हैं। क्या हमें सारा फिक्र अपनी दुनिया की इसी का तो नहीं? खाना चटखा रहे, ये बादराबाद का पूरा राउंड अबाउट जो खाने खिला रहा है आपको, मजे, चटखारे, सी फूड, आइसक्रीम, ये सब इस मट्टी के साथ चलना है। और रूह जो है जिसको अल्लाह ने लेना है, या तो हम नफ्सुल मुतमईना की सूरत में, उसका नहीं पता। अब इसकी कोई दलील है कि नेक लोगों के जिस्म भी महफूज रहते? तो इसके बारे में बास रिवायात में आता है कि वलीद बिन अब्दुल मलक के दौरे हुकूमत में जब हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के हुजरे मुबारक की दीवार गिरी, ये गिरी थी, ये हुआ था वाकया, तो इसे दोबारा तामीर करते वक्त एक पाँव नजर आया। अब फील करें इसको, लोग घबरा गए और समझे कि शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाँव मुबारक। लोग आपके जूते का नक्श लेके चूमते हैं घर की, बेसमेंट है ना, तो किसी ने पाकिस्तान में इधर ही किसी मुल्क शहर में बेसमेंट की छत के ऊपर पूरा जूता बनाया हुआ है कि उसके नीचे हम बैठा करें, नबी के जूते के नीचे। अल्लाह करे सुन्नतों पे अमल भी इतना ही हो, मोहब्बत है ना। तो खैर, लगा कि अल्लाह के नबी का पाँव है, और कोई ऐसा आदमी भी वहां मौजूद नहीं था जिसे यकीनी तौर पर मालूम होता कि ये अल्लाह के नबी का पाँव मुबारक है। सोचिए आगे क्या होगा। हत्ता के हजरत उरवा बिन जुबैर, जो आयशा रजी अल्लाह अन्हा के भांजे हैं, उन्होंने लोगों से कहा, बाखुदा ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाँव मुबारक नहीं है, बल्कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा का पाँव है। अल्लाह अकबर। ये वाक्य आप सही बुखारी किताबुल जनाइस में पढ़ लीजिए। चलिए उमर का पाँव देखिए, तो उमर का पाँव सही था तो इस कदर के बाकी भी है। एक और रिवायत सुन लें, अमर बिन जमूह और अब्दुल्ला बिन अमर अंसारी सलमा, जो कि सहाबी हैं उहद के शहदा में से, शायद आपको पता है कि नहीं, लेकिन ये दोनों एक ही कब्र में मदफून है। जब नबी सल्लम ने दफनाया था लोगों को तो कब्रें भी पूरी नहीं थी, तो फिर एक एक में कई के लोगों को डाला गया। तो ये दो कौन, अब्दुल्ला बिन अमर अल अंसारी और अमर बिन जमूह। और अमर बिन जमूह के बारे में कुछ और पता, लंगड़े थे जी, दोनों एक ही कब्र में हैं। इनकी कब्र को पानी के बहाव ने उखेड़ दिया, पानी आ गया। क्योंकि इनकी कब्र पानी के बहाव पर थी, तो इनके लिए अलग जगह कब्र खोदी गई ताकि इनको दूसरी जगह दफन किया जाए। और जब इनको पहली कब्र से निकाला गया तो उस वक्त भी इन दोनों के जिस्म बिल्कुल सलामत है, और ऐसे मालूम होता था जैसे अभी कल ही शहीद हुए हों। इनमें से एक साहबी को जब जख्म लगा था तो उन्होंने तकलीफ की वजह से अपना हाथ जख्म पर रख लिया, और अभी तक वो हाथ उसी जगह पर था। लोगों ने इनका हाथ हटाकर सीधा किया, यानी वहां से हाथ हटाएं, जब किया तो फिर वही जख्म की जगह पर वापस आ लगा। कब्र खोदने का ये वाकया जंगे उहद के 46 यानी 46 ईयर्स के बाद हुआ। ये इमाम मोहतम मालिक की रिवायत है किताबुल जिहाद, और आप पढ़ लीजिए। तो ये दो वाक्यात काफी हैं। फिर एक आपने वो मारू वाक्या सुना हुआ, जो साहबा की कब्रें हटाई गई थी। उस मुल्क के अंदर एक आलमे दीन थे, तो उनको मुस्तकिल ख्वाब आ रहा था कि हमें यहाँ से निकालो, हमें यहाँ से निकालो। दो तीन दफा जब ऐसा हुआ तो फिर मजलिसे शूरा मुकर्रर हुई, और उस दौर के जो खुलफा थे उन्होंने फिर इज्तिहाद किया, जमीन खोदी तो वाकई उधर पानी था। फिर साफ सुथरी क्रेनें लाई गई और क्रेनों के साथ उनको निकाला गया। उसके बाद उनको कहाँ दफन किया गया ये सऊदी हुकूमत ने नहीं बताया, वरना हम देसी लोग क्या कर चुके होते वहाँ, वहां तो पता नहीं कर ना पाते, अपने मुल्कों में उनकी कुछ बीहें बना चुके होते। तो अल्लाह का शुक्र है सऊदी हुकूमत की ये बहुत खूबी है कि उन्होंने शिर्क और शिर्क के मज़ाहिर जो है ना, उनके ऊपर बड़ी गहरी नजरें रखी हुई हैं। तो बहरहाल यहाँ पे क्या बात पूरी हुई कि मोमिन और काफिर उसकी कब्र के क्या हालात है। अब इससे आगे जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, कब्र की नेमतें और अजाब। ये सच है, अगर अजाब कब्र है ना तो नेमते कब्र भी है। हमारा दीन जो है ना वो बड़ा खूबसूरत दीन है, और वो बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस रख के सिखाता है। हम कभी कभी तबलीग के दौरान लोगों की जान निकाल देते हैं, और जब अपनी बारी आती है ना तो हम कहते हैं खैर है ना, अल्लाह गफूर रहीम भी तो है। आयत अगर पढ़ लूँ, मैं इसको एक नए टॉपिक के साथ शुरू करना चाहूंगी, कब्र की नेमतें और अजाब। इसके लिए अगर हम सूरत यासीन की आयत नंबर 20 से 27 को देखें, वजा मिन अक्सल मदीनति रजुल यसअ قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ظل في ضلال مبين। अब इससे अगला हिस्सा हमारे इस टॉपिक से मतलब है, इन्नी आमंतु बिरब्बिकुम फस्मऊन क़ीला उदख़ुलिल जन्ना। ये जुमला है कब्र की नेमतों के बारे में। क़ाला या लैत क़ौमी यालमून, بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کرو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں. آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ عقیدہ اس کا دیکھیے کتنا پختہ. یہ ہے بندے کی نیکی کہ اللہ کے بارے میں اس کا کانسیپٹ بہت کلیئر ہو. حالانکہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں. اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو. آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا. اس شخص سے کہا گیا، اب یہ کہاں کہا گیا؟ قبر میں کہا گیا، داخل ہو جاؤ جنت میں. اس نے کہا، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا. تو سورہ یاسین کی یہ آیات ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ کہ مرتے ہی نیک بندے کو خوشخبریاں ملنے لگتی ہیں. آپ میں یہاں رو دھو رہے ہوتے ہیں، وہ خوشخبریاں پا رہا ہوتا ہے. تو یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ قبر کی نعمتیں بھی برحق ہیں اور قبر کا عذاب بھی. عقیدے کے بارے میں ایک بڑی معروف کتاب عقیدہ تحاویہ، کبھی موقع ملے تو ضرور پڑھے. میں نے پیچھے بھی اس کا ریفرنس دیا تھا. اس کی شرح میں ابن ابی الازر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں تواتر یعنی کنٹینیوس ہیں، جو اچھی چین ہوتی ہے، جو تواتر کے درجے پہ حدیثیں پہنچتی ہیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات ہے، قبر میں انسان کو عذاب یعنی سزا اور راحت دونوں میں سے جس کا وہ مستحق ہوتا ہے وہ اس کو ملتی ہے. دوسری بات، دو فرشتے اس سے سوالات کرتے ہیں، لہذا عقیدے کے طور پر اسے قبول کرنا اور اس پر ایمان لانا واجب ہے. اتنی بات کو میں اپنی اردو میں بول دوں، یہ تو ایک کتابی زبان تھی نا، کہ عذاب قبر اور انعام قبر پر ایمان لانا عقیدے کا حصہ ہے. میں نام نہیں لینا چاہتی، آج بہت سارے فیمس جن کو لوگ کہہ لیجئے کہ تھنک ٹینک بھی کہتے ہیں، تھنک برین بھی کہتے ہیں، اور نہ جانے کیا کوچ اور موٹیویشنل سپیکرز، ان میں سے کچھ لوگ قبر کے عذاب یا قبر کی زندگی کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں قرآن سے دکھائیے کہاں ہے وہاں. تو ذرا سا کیئرفل رہا کریں، ہر اچھی آواز خوبصورت آواز ہے، بات اچھی نہیں ہوتی. موٹیویشنل سپیکر ہونے کا یہ نہیں ہوتا کہ ان کا سورس آف نالج بھی ٹھیک ہے. پہلے دور میں لوگ ایک جگہ بیٹھ کر استادوں کے ساتھ علم لیتے تھے، ان کا سورس ہی استاد تھا. جیسے بچہ ماں باپ کو ہی دیکھتا ہے تو سب کچھ سمجھتا ہے. آج اپنے ماں باپ اچھے نہیں لگتے کیونکہ اسٹوریز میں دوسروں کے ماں باپ کی اسٹوریاں لگی ہوتی ہیں. اسی طرح اپنے استادوں کو چھوڑ کر ادھر ادھر سے رنگ برنگ کا علم لے کر پتہ نہیں وہ کون سا ورژن بنتا. ایک دفعہ پورا سیکھ کر پختگی آ جائے پھر چیزیں نقصان نہیں دیتی. تو ایک سائڈ کی بات تھی. آپ اپنے بچوں سے کہیں گے، وہ کہیں لیٹ می سرچ دا گوگل، قبر کا عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. گوگل نے آپ کو یہودیوں اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے سب کے قبر سے متعلق نظریات سنا دینے، اب بیٹھ کے وہ پرچول کرتا رہے گا. تو یہ بڑا خطرناک طریقہ ہے آج علم کا. تو لہٰذا کسی بھی علم کے سورس کے ساتھ جڑ کر علم لیں، شرح صدر ہوگا. پھر ذمہ داری ان پر ڈال دیں، ڈھونڈیے وہ جو قرآن سنت والے ہوں، اور ماشاءاللہ آپ کے ارد گرد بہت سارے ہیں جن کی بات آپ کو سمجھ آتی ہے، جس کے بعد دل بدلتا ہے، جس کے بعد آپ کی اور ان کی ویو لینتھ ملتی ہے کہ پریکٹیکلی میں زندگی اچھی گزار سکتی ہوں اس بات کو سن کر. بس اس کو لیجیے اور تھوڑی دیر کانٹینٹ رہ کر اسی میں جڑے رہیں. یہ چٹخارا ہوتا ہے، یہ بھی لے لوں، اچھا وہ بھی ڈال دیں، پلیٹر میں یہ بھی دو کباب ڈال دیں، دو فش کے پیس ڈال دیں، اچھا تھوڑے چپس بھی ڈال دیں. یہ اسلام کا مزاج نہیں، یہ علم کا مزاج نہیں ہے. تقابل ہی کرتے رہ جاتے ہیں کئی جگہ. تو اسٹوڈینٹس بن کے اپنے کورس کو فوکس ہو کے پڑھیے. اس دوران کچھ نہیں سننا چاہیے، کچھ نہیں پڑھنا چاہیے، ورنہ وہ جیسے نیویگیشن سسٹم میں انٹرپشن ہوتی ہے نا، آپ کے دماغوں میں ہوں گی. تو بہرحال، اور اپنا سبق یاد نہ ہو، گروپنگ صحیح نہ کر سکے اور کورس کا حق نہ دے سکے اور دوسری چیزوں میں وقت لگائیں، یہ درست نہیں ہوگا. چلیے، तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बातें मिली उसका खुलासा क्या हुआ? कब्र में अजाब भी होता है, राहत भी होती है, जो बंदा जो डिजर्व करे उसको वो मिलता है। अगली बात, दो फरिश्ते सवालात करते हैं और अकीदे के तौर पे इसे कबूल करना और ईमान लाना वाजिब है। हाँ, एक चीज कि ये सब उस वक्त जो हो रहा होता है, इस चीज की कैफियत क्या होती है, इंसानी अकल की रसाई यहाँ तक नहीं कि वो फीलिंग्स क्या होती हैं जो मरने वाले को मिलती हैं। लेकिन हम अपनी बात को समझने के लिए बस इतना कह सकते हैं कि अजाबे कब्र का दूसरा नाम अजाबे बरजख है। बरजख है। हर मरने वाला जो अजाब का मुस्तहिक हो उसे ये अजाब जरूर मिलेगा, खा वो कब्र जमीनी घड़े में दफन किया गया हो, चाहे परिंदे खा जाए, जल के राख हो जाए, हवा में उड़ा दिया जाए, या सूली दिया गया हो, या समंदर में फर्क हो गया हो। तो लिहाजा एक हदीस सुन लीजिए जिससे आपका शरह सदर हो जाएगा इससे कि कब्र में अजाब भी है और नेमत भी है। और ये भी अकीदा तहाविया की शरह में मौजूद है, बात तवातुर के दर्जे पे है। अब्दुल्ला बिन उमर से ये रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जब कोई शख्स मरता है तो इसे सुबह शाम इसका ठिकाना जन्नत या जहन्नुम में दिखाया जाता है, यानी अगर वो जन्नती है तो इसे जन्नतों वाले महल्लात दिखाए जाते हैं, अगर जहन्नमी है तो जहन्नमियों वाला ठिकाना दिखाया जाता है। इसे बताया जाता है, ये है तेरी वो रिहाइश गाह जहाँ अल्लाह ताला क़यामत के रोज तुझे भेजेगा। वही बात जो हमने पीछे पढ़ी उसकी कंटिन्यूशन है। ये बुखारी की रिवायत है, किताबुल जनाइस 1379 नंबर। तो क्या पता चला कि कब्र का मामला अल्लाह ने कुछ खोल भी दिया और कुछ ढांक भी दिया, लेकिन ये सच है। अब अगला अहम टॉपिक है, जो लोग ये कहते हैं कि कुरान में किधर लिखा है। मेरे से भी कई दफा कुछ लोगों ने बहस की, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, अजाबे कब्र कुरान की रोशनी में। बाज़ लोग कहते हैं कुरान में नहीं आया तो हम नहीं मानेंगे, हदीस नहीं हम मानते, ये कहते तो नहीं लेकिन जुबाने हाल से बताते हैं कि हदीस है, पता नहीं हदीसें ठीक भी नहीं। और अब तो एक मशहूर टर्म मैंने कुछ लोगों के मुंह से सुनी, ये कहानियां गढ़ी हुई है, ये देखो ना ये इन्होंने क्या कुछ किया हुआ है। तो याद रखिए, हमारे लिए कुरान की बात और हदीस की बात दोनों बराबर है। अल्लाह रसूल की जात में फर्क है, बात में कोई फर्क नहीं है। अगर कोई चीज कुरान से साबित होती है ना, तो इसी तरह वो हदीस से भी साबित होती है। यानी अगर बिलफर्ज कुरान में एक भी आयत या इशारा कब्र के अजाब पे ना होता तो क्या हम ना मानते? मैं ये आपको पहले से बता रही हूँ ताकि आप ये ना सोचें कि कुरान में आ गया तो मानना पड़ रहा है। अगर कुछ भी ना होता, जबकि है, जो मैं भी आपको आयतें नोट कराऊंगी, तो क्या हम कब्र के अजाब को ना मानते क्योंकि वो हदीस में है? मानते, बिल्कुल मानते, 100% मानते, क्योंकि कुरान से भी कोई चीज साबित हो सकती है और हदीस से। लेकिन ये तो ऐसा मौजू है जिसमें कुरान की आयतें मौजूद है। चलिए सुनना शुरू करें, नंबर आप आयतों के नोट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह कभी किसी को मौका हो पढ़े तो आप लोग उससे फायदा उठा सकते हैं। पहली बात है कि इमाम बुखारी ने अपनी किताब में किताबुल जनाइज में अजाब कब्र के मुतालिक एक बाब बांधा है, बाब मा जा फी अजाबिल कब्र, और उसमें ऐसी आयात नोट की हैं जिससे कब्र के अजाब से मुतल्लिक बातें मिलती हैं। पहली आयत सूरत गाफिर आयत 45, वहा कभी आलि फिरौन सुउल अजाबी अन्नार युरदून अलैहा गुदुवन व अशीयम व यौम तकूम अस्सा अदखिलू आल फिरौन अशद्दल अजाब। सूरत गाफिर की आयत 45-46 है। आले फिरौन पर बुरी तरह का अजाब उलट पड़ा, आंख है जिसके सामने ये हर रोज सुबह शाम लाए जाते हैं, और जिस दिन कियामत कायम होगी फरमाने इलाही होगा कि फिरौनियों को सख्त तरीन अजाब में डाल दो। अब आप देखिए इस आयत का अंदाज देखिए, एक अजाब तो इस कौम को रोजे कियामत हिसाब किताब के बाद होगा, लेकिन एक अजाब इन्हें रोजाना सुबह शाम दिखाया जा रहा है। इससे पता चलता है कि ये वो अजाब है जिसे कब्र या बरजख का अजाब कहते हैं, और मेजोरिटी यानी जमहूर उलमा ने भी इस आयत से अजाब कब्र या अजाब बरजख की दलील ली है। फतुल बारी को देख लीजिए, आपके सामने जो रिवायत है वो भी फतुल बारी की ही जिल्द 3 के सफा 233 की है। तो पहली बात आपको समझ आ गई कि फिरौनियों को जो सुबह शाम अजाब हो रहा है वो भी हो रहा है ना, अभी तो क़यामत नहीं आई, क्योंकि वह हाक के बाद आप देखिए ना, ये वक्फ है, व यौम तकूमुस सा, और जिस दिन कायम हो जाएगी क़यामत, वक्फ, फिर कहा जाएगा अदखिलु आला फिरौन। तो ये उस वक्त है, तो वो पहले वाला कौन सा, ये और अदूना लेहा, ये कब्र का है। यानी इसका ब्रेक डाउन करें तो आयत के अंदर इसकी दलील मौजूद है। चलिए दूसरा नंबर लिखिए, सूरत इब्राहिम की आयत 27, इसके बारे में हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु बिलकौलिस साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। ये आयत अजाब कब्र के बारे में नाजिल हुई। कब्र में मुर्दे से पूछा जाता है, तेरा रब कौन है? वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है और मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। चुनाचे इस आयत का यही मतलब है कि युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु बिलकौलिस साबित फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह ताला अहले ईमान को कलमे की बरकत से दुनिया की जिंदगी और कब्र की जिंदगी में साबित कदमी अता फरमाते हैं। तो साबित कदमी से क्या मुराद है? मुनकर नकीर के सवालात के जवाब देने में। तो ये दो आयतें मेरा हल है काफी हैं, एक भी ना होती तो काफी थी, अब तो हमें दो हैं और भी इशारे हैं। लेकिन अब नेक्स्ट पे चलते हैं, कुछ अहादीस, यानी अजाबे कब्र अहादीस की रोशनी में। बहुत सारी हदीसें हैं, मैं चंद सिलेक्टेड हदीसें आपके सामने रखूंगी। पहली रिवायत बुखारी में है, किताबुल जनाइज 1372, और हजरत आयशा से ये रिवायत मौजूद है। कहती हैं कि अन्ना यहूदीयतन दखलत अलैहा फजकरत अजाब अल-कब्र फकालत लहा आज़किल्लाहु मिन अजाब अल-कब्र। हजरत आयशा से रिवायत है कि एक यहूदी औरत आई और अजाब कब्र की बात करने लगी। इसी दौरान वो हजरत आयशा से कहने लगी, अल्लाह ताला तुझे अजाब कब्र से बचा ले। हजरत आयशा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजाब कब्र के बारे में सवाल किया, तो आपने फरमाया, हाँ अजाब कब्र हक है। हजरत आयशा कहती है, इसके बाद मैंने नबी सल्लम को नहीं देखा कि आपने नमाज पढ़ी हो और इसमें कब्र के अजाब से पनाह ना मांगी हो। क्या पता चला एक यहूदी औरत, इसका मतलब कि तौरात में भी ये कॉन्सेप्ट मौजूद था कि कब्र का अजाब बरहक है। दूसरी रिवायत लीजिए, हजरत अय्यूब से है, अन अय्यूब बिन रदी अल्लाह अन्हु कल खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादमा गरबत शम्सु फसमिया सौतन फकाला यहूदु तुअज्जबु फी कुबूरिहा। हजरत अय्यूब कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज गुरूब होने के बाद घर से निकले तो कब्रिस्तान में से कोई आवाज सुनी, तो आपने इरशाद फरमाया, यहूदियों को इनकी कब्रों में अजाब हो रहा है। अल्लाह ताला अपने नबी को सुनवा देता जो भी चाहिए। सही मुस्लिम की रिवायत है 2869। तो अल्लाह ताला ने ये सारे इशारे रखे। एक और रिवायत, वो भी सही मुस्लिम में, 2867, अबू सईद खुदरी से हजरत जैद के हवाले से, जैद बिन साबित कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी नजार के एक बाग में एक खच्चर पर जा रहे थे, हम भी आपके साथ थे। अचानक आपका खच्चर बिदका, यानी थोड़ा सा इनॉय करने लगा, और करीब था कि आपको गिरा देता। जहाँ खच्चर बिदका वहाँ 5, 6 या 4, तीन नाम है, 5 थी या 6 थी या 4 कब्रें थी। आपने दरियाफ्त के, इन कब्र वालों में से कोई शख्स जानता है, इनके बारे में आप लोग जानते हैं? एक आदमी ने कहा कि मैं जानता हूँ। आपने पूछा, ये लोग कब मरे थे? इस आदमी ने कहा कि शिर्क के जमाने में। आपने फरमाया, लोग कब्रों में आजमाए जाते हैं, अगर मुझे खदशा ना होता कि तुम लोग अपने मुर्दे दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह के हजूर दुआ करता कि वो तुम्हें भी अजाबे कब्र सुना दे जिस तरह मैं सुनता हूँ। यानी फिर हम बर्दाश्त ना कर सकते हैं। फिर आप हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, अल्लाह ताला से जहन्नम के अजाब की पनाह मांगो। लोगों ने कहा, हम जहन्नम की आग से अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। फिर आपने फरमाया, अल्लाह ताला से कब्र के अजाब की पनाह मांगो। लोगों ने कहा, हम जाहरी और पोशीदा फितनों से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगते हैं। फिर आपने फरमाया, फितना दज्जाल से बचाव के लिए पनाह मांगो। तो लोगों ने कहा, हम फितना दज्जाल से अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं। अब इतनी क्लैरिटी और लोग फिर भी देखे नहीं मानते, हैरत है, वो क्योंकि हदीस को नहीं मानते। चौथी रिवायत लीजिए, हजरत अनस से है, एक ईसाई आदमी मुसलमान हुआ, इसने सूरह बकरा और आले इमरान पढ़ ली और अल्लाह के नबी के लिए वही की किताबत करने लगा, यानी कातिबीन वही में शामिल हो गया। लेकिन ये शख्स बाद में मुर्तद हो गया और ये कहना शुरू हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो किसी बात का पता ही नहीं। जो कुछ मैं लिख देता हूँ बस वही वो कह देते हैं। देखिए बंदे का दिमाग घूमते एक सेकंड नहीं लगता, हमेशा दुआ किया करे अल्लाह से जो खिदमत ले रहा है वो लेता ही रहे। अल्लाह ताला के हुक्म से जब उसे मौत आई तो ईसाइयों ने उसे दफना दिया। सुबह हुई तो लोगों ने देखा जमीनों से बाहर निकाल फेंका है, यानी कब्र फटी और वो शख्स बाहर है। ईसाइयों ने कहा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके साथियों का काम लगता है, इसलिए कि इनका दीन छोड़कर आया है, लिहाजा उन्होंने इसे कब्र खोद कर बाहर फेंक दिया होगा। चुनाचे ईसाइयों ने फिर इसकी कब्र खोद दी, अब इसकी कब्र ज्यादा गहरी बनाई। जब सुबह हुई तो जमीन ने इसे फिर बाहर निकाल फेंका। ईसाइयों ने फिर यही कहा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों का काम है, क्योंकि ये इनके दीन से भाग कर आया है, लिहाजा उन्होंने इसकी कब्र खोद कर लाश बाहर निकाल फेंकी। अब तीसरी मरतबा उन्होंने इसके लिए कब्र खोद दी और इतनी गहरी बनाई जितनी गहरी वो बना सकते थे। सुबह हुई तो देखा तो जमीन ने इसे फिर बाहर निकाल फेंका। अब इन्हें यकीन हो गया कि ये मुसलमानों का काम नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से सजा है। चुनाचे ईसाइयों ने इसकी लाश को ऐसे ही छोड़ दिया। ये बुखारी में रिवायत आप जाकर खुद भी देख सकते हैं, किताब अल मनाकिब है और अलामात नबूवा फिल इस्लाम 3617 नंबर की हदीस है। तो क्या इससे बड़ी बात और क्या होगी। पांचवी हदीस ले लीजिए, अबू हुरैरा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में शरीक थे, आप कब्र के किनारे बैठकर रोने लगे, हत्ता कि मट्टी आपके आंसुओं से तर हो गई। फिर आपने फरमाया ऐ मेरे भाइयों इस कब्र के लिए कुछ तैयारी कर लो। थी ना कोई हकीकत तो बोला, ऐसी तो नहीं बातें होती। और ये सुनन इब्ने माजा की रिवायत है, किताबु जोहर बाब अल हुज्न वल बुका, और इब्ने माजा में 1383 भी है। सिक्स रिवायत लीजिए, अब्दुल्ला बिन अब्बास से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे तो आपने फरमाया कि इन दोनों कब्र वालों को अजाब हो रहा है, और ये अजाब किसी बड़ी बात पर नहीं हो रहा। फिर आपने फरमाया इनमें से एक चुगली खाता था और दूसरा अपने पेशाब के छींटों से एहतियात नहीं करता था। ये भी बुखारी की रिवायत और बड़ी मारूफ रिवायत है। और हदीस के इस जुमले है कि अजाब किसी बड़ी बात पर नहीं हो रहा, इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद नहीं कि गीबत चुगली और पेशाब के छींटों से बचाव ना करना ये बड़े गुनाह नहीं है। मतलब यह है कि हम इन गुनाहों से बचने की कोशिश नहीं करते, कॉमनली ये काम करते हैं। और सेवंथ हदीस जिस पे ये टॉपिक पूरा करेंगे हम, वो क्या है, हजरत अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन मैं वो चीज़ें देखता हूँ जो तुम नहीं देखते। इमेजिन कीजिए, मैं वो चीज़ें देखता हूँ जो तुम नहीं देखते। आप इस जुमले पे गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह के नबी को क्या कुछ दिखाया जाता था। और इसी तरह से मैं वो कुछ सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। आसमान अल्लाह के खौफ से चिरचिरा रहा है और इसे चिरचिराना ही चाहिए। इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, आसमान में चार उंगलियों के बराबर भी जगह ऐसी नहीं जहां कोई फरिश्ता अपनी पेशानी झुकाए अल्लाह के हजूर सजदा रेस ना हो। अगर तुम वो बातें जान लो जो मैं जानता हूँ तो तुम हंसो कम और रो ज्यादा, और तुम बिस्तरों पर बीवियों से लुत्फ़अंदोज़ होना छोड़ दो और अल्लाह की पनाह तलब करते हुए मैदानों की तरफ निकल जाओ। हदीस के रावी हजरत अबू जर कहते हैं काश मैं एक दरख्त होता जो काट दिया जाता, जो काट दिया जाता। ये तिरमिजी की रिवायत है जो हमने अभी पढ़ी और भी जगह पे इसके हवाले है। तो इतनी बात से मेरा ख्याल है जिसको मानना है वो मानेगा, जिसको नहीं मानना वो नहीं मानेगा, लेकिन हमारा ईमान है कि कब्र की हकीकत मौजूद है। आज बहुत दुनिया में साइंस ने तरक्की कर ली, बहुत कुछ हो गया, लोग इस दुनिया में रहकर दूसरी दुनिया के हालात जानने लगे, और अब एक और जो नया फितना तो नहीं कहूंगी बन जाएगा, तो एक और हल्का बता है वर्चुअल रियलिटी। आप यहाँ बैठे बैठे उसमें लिखते हैं कि मुझे पेरिस की फुलार रोड पे वॉक करनी है, थोड़ी देर में आप वहां होंगे, चल रहे होंगे, फिर होंगे, आपको लोग दिख रहे होंगे। ये बस चंद साल के खेल हैं ये जो आपस में मिलते मिलाते हैं। पूरी दुनिया को ना कैद किया जा रहा है, छोटी छोटी अनसीन वॉल्स हैं जिसमें हमारे बच्चे बंद होते जा रहे हैं। मैं आपको इस सारे टॉपिक के बाद यही बात कहना चाहती हूँ कि आपका मेरा काम क्या है कि बेहतरीन तरीके से इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है इन सारी चीजों को सामने रखते हुए अपनी और अपनी नस्लों की हिफाजत कीजिए। और आप और मैं जितना ज्यादा इस चीज को फील करते जाएंगे इंशाल्लाह हम पॉजिटिव होंगे। अपने बच्चों को ऐसा वक्त दीजिए जो क्वालिटी टाइम हो। दीन के नाम पे कहानियां ना सुनाएं, सीरियस रियल नॉलेज उनको दीजिए। आप देखेंगे कि एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला जरूर उनके लिए इन चीजों को समझना आसान करेगा। और आपका मेरा काम क्या है कि हम बेहतरीन तरीके से इन चीजों को लेते हुए अपनी इस्लाह करें। चलिए, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नक अंतत तवाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमईन, बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।